ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यत्पादयोः असठधीः सलिलं प्रदाय दुर्वा अंकुरैः अपि विधाय सतिं सपर्याम् अपि उत्तमां गतिं आशौ भजते त्रिलोकीं दाश्वान् अविक्लवमनः कथं आर्तिं ऋच्छिता। यत्पादयोर्षटधि सलिलं प्रदाय दुर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतिं सपर्याम् अप्युत्तमं गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दस्वान् विक्लवमना कथमार्तिरुच्छेत्। यत्पादयोर्षटति सल्लिलं प्रदाय दुर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतिं सपर्याम् अप्युत्तमं गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दस्वानविक्लवमना कथमार्तिमृच्छे। द्वैतरहित विशाल हृदय वाला व्यक्ति सलिलं जल प्रदाय देकर दुर्वा घास अंकुरैहि तथा फूल की कलियों से अपि यद्यपि विधाय अर्पित करके सतिम परम पूज्य सपर्याम पूजा सहित अपि यद्यपि उत्तमां अत्यंत उच्च गतिम लक्ष्य अशौ ऐसा पूजक भजते पात्र होता है त्रिलोकीं तीनों लोकों को दस्वान आपको देते हुए अविक्लवमनः बिना किसी मानसिक द्वैत के कथम कैसे आर्तिम बंदी बनाए जाने के क्लेश का ऋच्छेत भागी है। अनुवाद अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जिनके मन में द्वैत नहीं होता है वे आपके चरण में केवल जल दुर्वादल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज ने बिना द्वैत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं। तात्पर्य भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तयोम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरूतम स्नामि प्रत्यात्मनः। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई निष्कपट व्यक्ति भक्ति पूर्वक एवं द्वैत रहित होकर भगवान के चरण कमल पर थोड़ा सा जल फूल फल या पत्ता चढ़ाता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब वह भक्त स्वर्गलोक चला जाता है। सो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया और प्रार्थना की वे बलि महाराज को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें वरुण पास से बंदी होने के कारण कष्ट हो रहा था और उन्होंने पहले ही तीनों लोगों तथा अपना सर्वस्व उन्हें भेंट कर दिया था। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पश्चात्तते सता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके मन में द्वैत नहीं होता है वे आपके चरण में केवल जल दुर्वादल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उत्तम उत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बड़ी बलि महाराज ने बिना द्वैत के तीनों लोगों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं। हाँ, इसी श्लोक में हम लोगों को मिल रहा है, सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़ी छी तुम्हार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर। भक्ति विनोद जी लिखते हैं, सब कुछ हम आपके चरण में समर्पित करके प्रभु हम आपके आश्रय में हैं, आप हमारे भगवान हैं, स्वामी हैं, हम आपके कुत्ते हैं, आप हमको स्वीकार कर लीजिए। तो ये श्लोक में हम लोगों को बलि महाराज के जीवन में जो उन्होंने स्पेसिफिकली बलि महाराज और विंध्यावली प्रह्लाद और कौन चार लोग ब्रह्मा जी, ये चार लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं बलि को कैसे मुक्त किया जाए। तो जब हम श्लोक को पढ़ते हैं तो फिर अगर उनको छंद में थोड़ा गलती हो जाता है तो फिर छंद का दोष लगता है, इसके कारण छंद के नियम बनाया गया है। गंगादास क्या नाम उनका, चैतन्य महाप्रभु का संस्कृत गुरु गंगादास पंडित, तो गंगादास पंडित छंद मंजरी लिखे हैं। तो श्लोकों को हाँ थोड़ा भाई आवाज तेज कर लो, मैं थोड़ा स्लो हूँ, आपके तो अपग्रेड मशीन है। तो छंद मंजर में वर्णन होता है कि श्लोकों को अपने मीटर के साथ नियम के साथ पढ़ना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। और दोष लगने से कौन सी प्रकार का दोष लगता है, जैसे मान लो कि आम का अगर रस पीते हो तो फिर तुरंत रस का आस्वादन होता है जीवा में, थोड़ा सा अगर नमक डाल देते हो ज़्यादा तो फिर आम का असली रस जो है वो निकल जाता है। ऐसे ही तो ठीक वैसे ही अगर श्लोक के अंदर छुपा हुआ छंद के माध्यम से जो श्रुति मधुर होता है, कान को सुनने में अच्छा लगता है और वो भी सेवन होता है रस सेवन, अगर उसको थोड़ा सा एक अक्षर का इधर उधर हो जाता है तो फिर श्रवण के माध्यम से जो रस को प्राप्त करना है वो भी इधर उधर हो जाता है, तो संस्कार वही पड़ेगा, इसके कारण उसको छंद के माध्यम से ही गाया जाता है। तो यहाँ पर एक श्लोक में, एक पाद में शायद 14 या 15 ऐसा अक्षर है। ये हमारे जो ब्रह्म संगीता गाते हैं, वेणुं कुणंदम अरविंद दलायताख्यम, एग्जैक्टली ये जैसा मीटर है। नवदीप धाम महात्म्य में, नवदीप शतक में जो आप लोग जब गौर नित्य का अर्चन करते हो तभी आप लोगों को नवदीप धाम की स्मरण करने की पड़ती है। स्मरण करते हुए भगवान के अर्चन करते हो तभी अर्चन पद्धति में पंचरात्र प्रदीप में एक श्लोक लिखते हैं, वो जो किताब बनाए हैं, वो उसी श्लोक में सृगधारा छंद से सजाया गया एक बहुत श्लोक है, जिस श्लोक में एक पाद में 21 अक्षर है, 21 या 26 अक्षर ऐसा कुछ है, 21 अक्षर है। तो 7, 7, 7 उनसे 3 भाग से विभाजित करके उसको गाया जाता है, बहुत सुंदर श्लोक है। सरुधुन्यश्चारुतीरे 7 है, स्फुरति मते बृहत् कुर्म पृष्ठा भगात्रम रम्या रामा वृतम सन मणिकनक महा सत्म संघी परीतम वृंदाटव्यम हिरणम त्रिजगतानुपमम श्रीनवदीपमी है। ये 7, 7, 7 से सजाया गया बहुत सर्गधारा छंद है, उसको ऐसे गाया जाता है। तो श्लोक के अंदर अनेक सारा नियम है, छंद का नियम है, संधि का नियम है, शब्दों का नियम है, सब नियम है, मात्रा का नियम है। संस्कृत कोई साधारण लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश जैसा अथवा हिंदी जैसा। 63 लेटर है टोटल, 63 जीव गोस्वामी लिखते हैं मात्रा को मिला करके, कुछ मात्राओं को मिला करके 63 लेटर है। तो इसी श्लोक में हम लोग पा रहे हैं कि हम लोगों को कपट नहीं करना चाहिए अथवा कपट का आचरण जीवन में उतारना नहीं चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। कपट पूर्वक हरि की सेवा नहीं हो पाएगी, कपट से सेवा करें तो भगवान के प्रति विधान नहीं होगा, कपट में सेवा करेंगे तो फिर भगवान उसको ग्रहण करेंगे नहीं। इसके कारण कपट भक्ति का बाधक है, कपट भक्ति के प्रेम भक्ति के जड़ को नष्ट कर देता है। कपट अगर जीव कपट के साथ भगवान की सेवा करती है, लंबा यात्रा करना पड़ता है भक्ति में परम गति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कपट हमारे जीवन में, भक्तिमय जीवन में अथवा दूसरे लोगों के जीवन में, जैसे परिवार में अगर माँ से पुत्र कपट करता है, पत्नी से पति कपट करता है अथवा पति से पत्नी कपट करता है, तो फिर विश्वास टूट जाती है। अगर मान लो कि हम लोग 10 साल तक कृष्ण की सेवा श्रद्धापूर्वक कपट से शून्य होकर के जो कुछ कहा उसको करते रहे, जैसे जो कहा वो करते रहे, कभी ध्यान नहीं दिए कि ये कनिष्ठ वैष्णव है, ये ज्येष्ठ वैष्णव है, उत्तम वैष्णव है, बस हम कृष्ण के शरण में हैं, ये भी कृष्ण के शरण में, चलो उनकी बात मानते हैं, उनकी थोड़ा सेवा कर लेते हैं, विचारधारा कभी मन में नहीं आया कि कौन क्या है, करते रहे श्रद्धापूर्वक 10 साल करते रहे, थोड़ा सा बुद्धि का गड़बड़ी हुआ अथवा स्वतंत्रता का अनुभव हुआ नहीं है। जब शास्त्र पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उसके अंदर उत्तम मध्यम और कनिष्ठ भक्तों का विवरण होता है, तभी विवरण कैसे होता है ना, उनके साथ व्यवहार के साथ विवरण होता है तो वर्णन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तम मध्यम और कनिष्ठ भक्तों का वर्णन होता है, लेकिन कैसे उनके साथ व्यवहार करना है वो वर्णन है, और वो व्यवहार भी करना है कैसे, अपने ही स्वभाव के साथ। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल व्यवहार करना है, कहें हाथ जोड़ना है, ये करना है, नो नो। सो दो प्रकार के जो व्यवहार है, एक सत्वगुण का व्यवहार होता है जो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन होता है कनिष्ठ भक्तों के साथ। मान लो अगर कनिष्ठ भक्तों के साथ हम लोग व्यवहार करेंगे तो फिर अगर कनिष्ठ भक्त आपको मान नहीं रहा है अथवा आपको आदर नहीं कर रहा है, तो उनकी तिरस्कार करना नहीं चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन दूर से अपने आप को उनसे दूर रखना चाहिए, यही नियम है। क्यों? क्योंकि ताकि वो अपराध क्या है, आवास भाई थोड़ा कृपा करके आवास थोड़ा सा तेज कर दे ताकि कहीं के ना हो। तो क्या है ना, ताकि क्यों ऐसा कहा गया है, रूप गोस्वामी कहते हैं इसलिए कि ताकि कनिष्ठ भक्त जो हैं अगर उनके मन में ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे मध्यम भक्त सीनियर भक्त हो, उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो फिर वो लोग उसको गलत ढंग से सोच करके वो ऐसे ही व्यवहार करेंगे जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर वो लोग अभी कनिष्ठ है, हम लोग दृढ़ है भक्ति में, हमारा पाप लगभग नष्ट हो गया है, कनिष्ठ भक्तों का अभी पाप नष्ट नहीं हुआ है, दृढ़ नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है वो अपराध कर बैठे अथवा अपने इंद्रियों को गाइड करने के लिए जानते नहीं अथवा अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर पाते, फिर ये अपराध के कारण समस्या ही होगा कि भक्ति से वो निकल जाए। इसी के कारण क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थत कवयो वदन्ति, इसी के कारण भक्ति को कहा गया है थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ है ये, इतना डिफिकल्ट नहीं अगर हम्बुल पूर्वक चले, बस विश्वास पूर्वक चले, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट है। सब कुछ को अपने इंटेलिजेंस के ऊपर विश्वास करके चलना कठिन है, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, कैसे होना चाहिए, नहीं, थोड़ा समर्पित भाव से चले तो फिर काले के ब्लैक का व्हाइट कर सकते हैं और व्हाइट का ब्लैक हो सकता है भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, ये सब होता है भक्ति के राज्य में। अगर कहीं पर भगवान कृपा करते हैं तो फिर युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से धर्म के संस्थापन होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो थोड़ा सा झूठ बोल दो, धर्मराज अगर झूठ बोलेंगे तो फिर संसार का क्या होगा। तो भक्ति में ऐसा भगवान थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट का रोल करते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना नहीं करेंगे हर समय, रिपीटेशन ऑफ सेम मिस्टेक इज नॉट एक्सक्यूजेबल, केवल कभी क्षमा के योग्य नहीं है, एक गलती को बार बार करें। इसी के कारण इसी श्लोक में जो प्रभुपाद जी श्लोक कोट किए, पत्रम पुष्पम फलम तयोम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति अपरुत्तम अस्नामी प्रयतात्मना, प्रयतात्मना शब्द जोड़ दिए हैं, कहते हैं कि भक्ति के साथ मुझे अर्पित करना है लेकिन प्रयतात्मन करना है। वो क्या ना, मान लो कि आपको डीटी की सेवा करने जाना है, तो प्रयतात्मन क्या है, आपके हृदय के अंदर स्वच्छ है, आपका हृदय स्वच्छ है, किसी भी गंदी नहीं है, मन भी स्वच्छ है, तो आप कहोगे क्या गंदी मन, मन गंदी नहीं है, गंदा नहीं है अथवा हृदय गंदा नहीं है, सेवा करने में क्या देखे, अंदर अंतकरण बहुत शुद्ध है, चलो सेवा करते हैं। लेकिन प्रयतात्मन करना पड़ता है, शौचादिक क्रियाओं से निवृत्त होना पड़ता है, बाह्य शुचि की आवश्यक पड़ता है, ये प्रयास करना पड़ता है। ये गलती नहीं करते हैं हम लोग कि नहीं अंतकरण शुद्धि है, इसके कारण बाह्य की शुद्धि आवश्यक नहीं है, लेकिन बाह्य शुचि हो लेकिन अंतकरण शुचि नहीं हो, कृष्ण कहते हैं वो क्या न मिथ्याचारी सोच्यते, कृष्ण कहते हैं वो मिथ्याचारी है, वो कृष्ण मिथ्याचारी कहते हैं, वो बहुत आवश्यक है अंतकरण की शुद्धि की। अंतकरण का अर्थ है कपट से मुक्त होना, ये बहुत आवश्यक है, बहुत मतलब 90% बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जो प्रेतात्मन है, ये परोक्ष रूप से कहते हैं यहाँ पर, ये बस स्नान करना थोड़ी देर की बात है, बहुत ज्यादा देर नहीं लगता स्नान करने में, है बाह्य शुचि होने में बहुत देर नहीं लगता, लेकिन आवश्यक है। ये थोड़ी सी गलती हमको भगवान कृष्ण को ऐसा आ सकता है हमारे प्रेम को स्वीकार करने में, हमारे लव स्नेह को स्वीकार करने में क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं अथवा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो स्नान न करने में अंतकरण शुद्धि है, इसके कारण मुझे स्नान नहीं करना चाहिए, इसमें कपटता दिखाई पड़ती है हमको, कपटता नहीं दिखाई पड़ती, नहीं मेरे हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति कपट नहीं है, क्यों, मेरा अंतकरण शुद्धि है। मैं जब आया था रोड पे, कुत्ते ने मुझे स्पर्श कर दिया, ये मुझे ज्ञात है, और शास्त्र में लिखा जाता है, सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में लिखते हैं श्वानो, अगर श्वान किसको छू लेता है तुरंत उसको स्नान करना चाहिए, कुत्ते अगर किसको छू लेता है तो फिर तुरंत उसको स्नान करना चाहिए, अथवा मुझे पता नहीं रोड में आते ही कुत्ते ने मुझे छू दिया अथवा स्पर्श करवा दिया, तो मुझे पता नहीं मैंने स्नान नहीं किया। लेकिन अगर ये संस्कार हम में पड़ा हुआ है, जब देखे कि कुत्ते स्पर्श किया मैंने स्नान नहीं किया, क्योंकि मेरा आज डिटीओरशिप का सेवा था नहीं, मेरा आज और दूसरा सेवा था, भागवत क्लास का हो अथवा कीर्तन का हो अथवा मंदिर मार्जन का सेवा हो, ये मुझे करना था, तो हमने उसको इम्पोर्टेंस दिया लेकिन इसको इम्पोर्टेंस दिया नहीं, तो वो संस्कार पड़ा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब हमको पता नहीं चला कि कुत्ते हमको स्पर्श किया है, तो हमने स्नान को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, भगवान की कृपा वहां मिलना चाहिए क्योंकि हर टाइम हमने स्नान कर रहे थे, अथवा अगर हर समय कुत्ते स्पर्श से स्नान कर रहे थे लेकिन आज हमको पता नहीं इसके कारण स्नान नहीं किए, तो फिर वहां पर भगवान कहेंगे नहीं कपट पूर्वक स्नान नहीं, ये स्नान किया नहीं, अथवा कपट के साथ वो रहा नहीं, तो भगवान वहां पर कुछ हद तक आपको कृपा कर सकते हैं, हम लोगों को कृपा कर सकते हैं। इसलिए कपट का संस्कार जो हमारे हृदय के अंदर पड़ता है, हमारे विधि निषेध के आधार के ऊपर पड़ता है, विधि को हम श्रद्धापूर्वक कितना पालन करने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अगर विधि को श्रद्धापूर्वक प्रयत्न करते हैं तो फिर हमको भगवान कृपा करके बुद्धि जोग दे देते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग स्नान करके आ करके किसी भी भजन क्रिया को संपादित करते हैं। फिर क्या लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। लाभ क्या होता है, इन सारे विधियों को पालन करने में विभिन्न इंद्रियों में छुपा हुआ कपट का संस्कार नष्ट हो जाता है, आंखों के माध्यम से कपट का संस्कार छुपा रहता है, कान के माध्यम से रहता है, क्योंकि ये जो इंद्रियां है उनके माध्यम से हम अनंत कोटि जन्म से लेकर के पाप के कार्यों को किए अथवा दुष्कर्म के दुर्भावना लाए, मन के अंदर सूक्ष्म रूप से वो विद्यमान है, तो हर इंद्रियों से उनको विड्रॉ करना हमारे लिए बड़ी कठिन है, इसके कारण हम लोगों को ये सारा विधि और निषेध को पालन करना पड़ता है। छोटा सा भूल के लिए बहुत बड़ा दंड दिए चैतन्य महाप्रभु गोविंद घोष को, कल मैं स्टोरी को कहा था आज कहता हूं, महाप्रभु संन्यास लिए, संन्यास जब लिए चले गए किधर ना, वृंदावन आने के लिए सोच रहे तो आए, गंगा के किनारे किनारे होते हुए वृंदावन आए, तो वृंदावन जब आए तभी क्या हुआ ना, उनके साथ गोविंद था सेवक, तो गोविंद जब थे तभी महाप्रभु को भूख लगा, कहे गोविंद थोड़ा प्रसाद लाओ, गोविंद लाए प्रसाद, तभी जब लाए तभी गोविंद खाने के बाद महाप्रभु कहने लगे सौंफ लाओ थोड़ा, मुखवास उसको कहते हैं, सुगंध के लिए मुख में डालते हैं थोड़ा सा। तो वो गोविंद के पास कुछ था नहीं, वो गए, एक गांव था पास में, तो दौड़ करके जा करके बहुत देर के बाद कुछ लाए, लाने के बाद महाप्रभु को दिए, उससे थोड़ा बचा करके रखे थे कि कल मैं महाप्रभु की सेवा ऐसे ही करूंगा। तो महाप्रभु कल खाने के बाद फिर वही मांगे कि सौंफ लाओ, तो गोविंद ने उसको ही दे दिया जो बचा करके रखे थे। तो महाप्रभु कहने लगे गोविंद कल मैंने मांगा था, बहुत देर के बाद तुमने दिया था, आज इतने जल्दी कहाँ से ले आए? तो कहा महाप्रभु मैं कल से थोड़ा बचा करके रखा था आपके लिए, आप इसको खा लीजिए, इसके कारण दे दिया जल्दी। तो फिर महाप्रभु कहने लगे इसमें क्या कपट का भाव है गोविंद का, वो सेवा के प्रत्यार्थ हो रहा है, महाप्रभु की सेवा करने के लिए क्या कपट का भाव, कुछ कपट का भाव आप लोग दिखाई पड़ रहा है? आप कहते उसको कपट, गोविंद ने किया महाप्रभु का बिना परमिशन से उनके लिए सेविंग करके रखा, और वो सन्यासी है, सन्यासी आश्रम में है, उनको पूछना चाहिए महाप्रभु आपके लिए मैं जो लाया हूँ प्रीवियस डे का खाना वो आज के लिए रखूँ क्या? उन्होंने पूछा नहीं था, अगर पूछे होते तो फिर ठीक होता, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं था। वो चीज अगर उसी गृहस्थ के घर में होता गांव में वो ठीक था, अथवा धन्वंतरी के पास था तो फिर वो ठीक था, लेकिन यहां अगर गोविंद के पास होता है तो फिर गलत होता है। दोनों में फर्क है, क्योंकि वो कर्मी है, ये भक्त है। कर्मियों को दंड यमराज देंगे उनकी गलतियों से, नहीं उनका गलती कुछ नहीं, मान लो कि यहां पर गोविंद को दंड मिलेगा अभी, और उसको जो दिया वही क्या गलती किया? नहीं, उनको दंड मिलने वाला नहीं, उनको तो पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि उनसे महाप्रभु का सेवा का अनुष्ठान हुआ। तो भक्तों के लिए थोड़ा सा नियम कठोर है, लेकिन कर्मियों के लिए पुरस्कार है अगर वो दान देते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए कर्मियों को ज्यादा उत्साह मिलता है शास्त्रों से। तो उन्होंने महाप्रभु कह दिए कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा मैंने सेविंग करके रखा था आपके लिए बचा करके। तो महाप्रभु कहे ठीक है, मैं सन्यासी हूँ, तुम ब्रह्मचारी हो, अब तुम्हारे मन में यही मनोभाव है कि संचय करना है, बचा करके रखना है, इसके कारण तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। हाँ, ब्रह्मचारी अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, महाप्रभु कह रहे हैं। आप लोग क्या करोगे कहो भाई, क्या करोगे? ब्रह्मचारी बताओ एक कोई, क्या करोगे? ऐसा गलती हो सकता है? अभी तो प्रभुपाद जी का सिस्टम है, चलता है, भगवान की सेवा के लिए हम लोग पैसा भी बचा लेते हैं, क्या दिक्कत है? खाना पीना तो ऐसे ही चलता रहता है, साधारण चीजें। अगर एक पैर सू है तो 50 पैर सू होता ही भगवान की सेवा में, एक क्लास देने के लिए, एक टॉयलेट जाने के लिए, एक यात्रा करने के लिए, एक ये के लिए, एक वो के लिए। तो क्या करे, कैसे उस सिस्टम को एडजस्ट करे महाप्रभु के सिस्टम के साथ? अभी नहीं हो सकता प्रभु, देवताओं के कैलकुलेशन से कृष्ण 5 साल पहले आए थे, ब्रह्मा के कैलकुलेशन से कितना, शायद कुछ दिन पहले अथवा कुछ घंटे पहले अथवा कुछ मिनट पहले, लेकिन हमारे कैलकुलेशन से 5,240 अथवा 45 साल पहले कृष्ण आए थे, और उनके बीचों बीच कितने आचार्य आ गए, भगवान का एक अवतार हो गया, चाणक्य भी आ गए, तो तो हम जब लोग आज एक भूल करते हैं कल एक भूल करते हैं तो फिर देवताओं के हिसाब से उसको अरे अभी तो भूल किया था, फिर भूल कर रहा, फिर बार बार भूल कर रहा, इसको दंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र ऋषि अपने इंद्रियों को संयमित करके कई हजार साल तक रहे, इंद्र का दिमाग में चक्कर आ गया कई हजार साल, लेकिन हम लोग हर मोमेंट में गलती करते रहते हैं। और महाप्रभु कितने साल गए हैं, 500 साल पहले, उनके कैलकुलेशन में अभी तो महाप्रभु शायद गए 5 दिन पहले हो, शायद अप्रकट होकर किसी भूलोक से। तो और 5 दिन पहले महाप्रभु गए, और प्रभुपाद जी कब आए थे, अब भी आए थे, कृष्ण चैतन्य का संस्थापन अभी हुआ है, और इतना ज्ञाप सिद्धांत पालन करने में क्यों है? तो इसलिए ये जो नियम है, महाप्रभु कह रहे हैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, वो ब्रह्मचारी महाप्रभु के चरण में गिड़गिड़ाए, निवेदन किए, रोए, नहीं नहीं मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। महाप्रभु कहे नहीं 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 नहीं, बहुत रोया गोविंद। फिर महाप्रभु कहने लगे ठीक है, तुमको राधा कृष्ण की सेवा बहुत जल्दी प्राप्त होगा, लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, ये सन्यासियों के लिए बहुत खतरा होता है, अर्थात सन्यासी का सेवक भी क्या होना चाहिए, क्या सन्यासी होना चाहिए, राइट, सन्यासी का सेवक भी सन्यासी होना चाहिए, ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए, फिर इनके जैसा गोविंद के पीछे रहना पड़ेगा। सन्यासी का सेवक लगभग सन्यासी ही होना चाहिए, अर्थात जैसे सन्यासी व्यवहार कर रहे हैं कलयुग में अभी के समय में प्रभुपाद जी के आधार पर, ऐसा ही होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। इससे सन्यासी जो आचरण कर रहे हैं अथवा उनके व्यवहार में डेंजरियस अथवा भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके कारण उनकी सेवा प्रायतः ब्रह्मचारी लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थ लोग सब खराब है, माताएं सब खराब नहीं सोचना है, अथवा हमारे प्रभु जी लोग जो हैं ऐसा कभी नहीं सोचना। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। आचार्य बैठे थे प्रवचन देना है, और गुरुकुल के छात्र ब्रह्मचारी लोग आए हैं, जनक जी भी आए, तो जनक जी आगे बैठे हैं, सारे ब्रह्मचारी पीछे बैठे हैं। सारे ब्रह्मचारियों के दिमाग में यही चल रहा है, जनक राजा है, पैसा है, सब कुछ है, इसके कारण उसको आचार्य आगे बैठा है, और हमारे पास कुछ नहीं है, हम आश्रम में रहते हैं, इसके कारण हमको पीछे बैठा है, ऐसा ब्रह्मचारियों के दिमाग में खिचड़ी पक रहा है। तो आचार्य को पता चल गया, जब पता, आचार्य तो सर्वज्ञ होते हैं, उनको पता चल गया, जब पता चल गया तो फिर क्या अपने योग शक्ति के प्रभाव से नगर में आग लगा दी। जब आग लगा दी तभी द्वारपाल आकर के कह रहा है कि आचार्य नगर में आग लग गया है, तो फिर सारे कहां पर क्या है, ब्रह्मचारी लोग भागे, मेरे कमरे में कहीं आग ना लग जाए, चलो सामान को कहीं से ठीक से रखा, कपड़ा में आग ना लग जाए, कोकनी में आग लग ना जाए, इसके कारण सब जाकर के ठीक से रखने के लिए व्यवस्था की। लेकिन जनक उठे नहीं वहां से, जनक चुपचाप बैठे रहे। द्वारपाल फिर आया, कहा नगर का आग अब आश्रम की तरफ आ रहा है। जनक जी फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, आत्मा क्या है, परमात्मा के साथ कैसा संबंध हो सकता है, जिज्ञासु श्रेमोत्तम, यह होता है जिज्ञासु का मनोभाव, जिज्ञासु का स्तर, पत्थर जैसा अपने आप को बैठा देते हैं, चाहे इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी खबर आए लेकिन हम अपने हिलेंगे नहीं। जनक जी गए नहीं, फिर योग शक्ति के प्रभाव से आचार्य आग को बुझा दिए, फिर सारे छात्र इधर उधर घूम फिर कर फिर आ गए, बैठ के चुपचाप, नहीं तो हम कथा सुनेंगे अभी, आज नाटक करेंगे, नौटंकी करेंगे। तो आचार्य उनको समझाए, आप समझ गए ना, आप लोग गए थे, जनक जी बैठे थे यहाँ पर कथा सुनने के लिए, क्यों आगे बैठे हैं, दृढ़ता है, निष्ठा है, क्या जीवन है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए, किम अकर्म किम कर्मेति, कभी भी उसको जानते नहीं। गृहस्थ हो तो फिर क्या, लेकिन फिर भी ऐसा कोई कोई व्यक्तित्व है गृहस्थाश्रम में भी, इस भयंकर संसार में आचरण करते हुए चलने में समर्थ हैं, सारे ब्रह्मचारियों से भी श्रेष्ठ है। तो हमको सबको देहात्म बुद्धि में नहीं रहना चाहिए कभी ना। मैं ब्रह्मचारी हूं, महाप्रभु क्या कहने के लिए, ना वैश्यो न शूद्रो पीवा यतीरवा, मैं यति नहीं हूं, वैश्य नहीं हूं, शूद्र नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, गोपी भर्तु पात कमलयोर दासो दासानुदास। कितना सुंदर है, कह दिए और आचरण करके भी दिखाए, और उनका पार्षद भी है प्रायतः ग्रस्त। लगभग बहुत प्रेम करते थे महाप्रभु। एक बार जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ पटनायक, उन्होंने कुछ प्रताप रुद्र से पैसा उधार लिए थे, तो समय आया, पैसा को पेमेंट नहीं किए, जो समय आया इतने दिन के लिए लिए थे, जब नहीं दिए तभी राजाओं के जो मंत्रियां वगैरह थे अथवा उनके जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने उनका संबंध रिलेशंस गोपीनाथ पटनायक के साथ अच्छा नहीं था, तभी महाप्रभु ने राजा को इधर उधर कह करके बनवा दिए कि गोपीनाथ पटनायक को फांसी में लटका दिया जाए क्योंकि पैसा वापस नहीं दे। तो राजा निर्धारण कर दिए, उनको पता नहीं था गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु का निजी जन है, अपने ही लोग हैं। तो उन्होंने गोपीनाथ पटनायक के लिए मृत्यु दंड का आदेश जारी करवा दिए। तो कुछ दिन के बाद उनको दंड दिया जाएगा। तो गोपीनाथ पटनायक चिंतित हुए, ये खबर महाप्रभु तक चली गया। महाप्रभु उनके पार्षद लोग कहने लगे कि गोपीनाथ पटनायक को दंड दिया जा रहा है। तो महाप्रभु कहने लगे, मैं इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्यों इन जैसे विषय लोगों का बात मुझे सुनाते हो, गोपीनाथ पटनायक को पैसे लेने की क्या जरूरत था, अगर पैसा लिए तो फिर उधार क्यों नहीं दिए। महाप्रभु ये सब चीज कहने लगे, और मुझे ये सब मत कहो, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं कृष्ण चेतना में आविष्ट रहना चाहता हूं। लेकिन गोपीनाथ पटनायक को बचाना है, पार्षदों की चिंता है, पार्षद लोग चले गए। और राजा के जो बहुत अपने ही महाप्रभु जो पार्षद है, काशीनाथ, क्या नाम उनका, काशीनाथ मिश्रा, तो वो प्रताप रुद्र के निज लोग है और महाप्रभु के भी, काशीश्वर है काशीनाथ, एनीवे काशी को समझ, लास्ट में ठीक कहता हूं, नहीं तो अभी माया इधर उधर प्रवेश करेगी। फिर why it is happening in our heart, because every living entity has different varieties of desires and in the heart, and फिर उसको अलंकृत करने में माया को कितने देर लगेगी। जैसे कृष्ण को हम अलंकृत करते हैं, श्रृंगार दर्शन करते हैं। तो काशी मिश्र, ठीक है, तो जब भगवान को प्रताप रुद्र काशी मिश्र के साथ थे, तभी काशी मिश्र को जा करके ये पार्षद लोग कहे कि महाप्रभु अभी गोपीनाथ पटनायक को बचाने के लिए मना कर रहे हैं, अभी आप जाकर के राजा प्रताप रुद्र को कह सकते हैं। तो काशी मिश्र को ये पता नहीं था, तो फिर उन्होंने गए प्रताप रुद्र को पूछने लगे, ऐसा हुआ है क्या? ना मुझे तो पता नहीं, कोई ऐसे लोग आकर के कहे कि नहीं नहीं ये घटना हुआ है। तो महाप्रभु बहुत दुखित हैं आपके ऊपर कि आपने उनको इतना दंड दिया। ना महाप्रभु दुखित हैं मेरे ऊपर, तो क्या करना चाहिए मुझे? नहीं नहीं आप थोड़ा महाप्रभु के पास जाइए और जा करके उनको निवेदन कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए कि आपके पार्षद को मैंने दंड दे दिया, मृत्यु का दंड, मुझे पता नहीं था, मेरे ही लोग कर्मचारी मुझे ही फंसा दिए। प्रताप रुद्र का साधारण से भक्ति था महाप्रभु के प्रति, तो आगे आकर के महाप्रभु से मिले, महाप्रभु को प्रार्थना की, प्रार्थना करके फिर गोपीनाथ पटनायक के दंड को स्थगित कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हैं तभी महाप्रभु की कृपा से सुप्रीम कोर्ट भी दंड को बदला देते हैं। तो महाप्रभु हो गए ना, कृष्ण हो गए सबके रक्षा करता। तो अगर ऐसा होता है हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, भक्तिमय जीवन में, गोपीनाथ पटनायक जैसा स्थिति अगर हम में आ रहा है, जो हमारी इच्छा के आधार पर न हो, परिस्थिति के आधार पर हो, और इसको हम संपादन नहीं कर पाते समय में, लेकिन भगवान का सेवक थे, उनके पार्षद थे, इसके कारण बच जाते हैं, भगवान रक्षा कर देते हैं। जिसे बलि के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, ब्रह्मा जी देव प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब कुछ दे दिया है, आपके हो गया है, उसको बचा लीजिए, उसको मुक्त कर दीजिए, अब उसको कष्ट मत दीजिए। क्या नहीं किया बलि, सब कुछ दे दिया। प्रह्लाद आ रहे हैं, प्रह्लाद बलि के गुण गा रहे हैं, और इसका छोटा सा सूक्ष्म दोष को निकाल रहे हैं, जो पहले श्लोक में शायद है, बलि महाराज ने वो नहीं, जो जब प्रह्लाद बलि को मिले, इससे कई श्लोक पहले बलि को कह रहे हैं कि तुमने गलती कहा किया, जहां पर गलती नहीं होना था वहां पर तुमने गलती कर दिया, बलि को समझा रहे हैं। तो उसी गलती के कारण आज उसको वरुण जी के फांस से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा ही घटना घटती है कि कभी कभी हो, अगर गलती हो जाती है उसको हमको भोगना पड़ता है। इसके कारण कृष्ण कहते हैं गीता में, तम तितिक्षस्व भारत मात्रस प्रशस्त कौन्तेय, गाइए, अर्जुन पूछने लगे कि प्रभु कब तक सहना है, कब तक सहें? अगर हम आज सहते हैं तो फिर कल फिर वही समस्या आती है, वही दुख आती है, तो फिर कल फिर सहते हैं, तीन बार सहते हैं, चार बार सहते हैं, पांच बार सहते हैं, कब तक सहें? अर्जुन पूछते हैं। और अर्जुन इतना भी नहीं समझ पाए, शीतोष्ण सुख दुखदा, जब इसे शीत आता है, इसे उष्ण आता है, गर्मी का महीना आता है, अब कहोगे क्या, प्रभु इसी भूलोक में कब ऐसा मौसम आएगा ना ठंडी होगा ना गर्म होगा ना बारिश होगा, पूरा रूम टेम्परेचर के साथ पूरा वातावरण रहेगा, ऐसा कब होगा? ऐसा यहां नहीं होने वाला है, प्रश्न नहीं उठता ऐसा यहां होगा। क्यों समझ नहीं पाए? तब कह दिए किसी तो सुख दुख सा, इसी संसार में ऐसा आता है, लेकिन आचार्य लोग उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिखते हैं। मैं तो इसी श्लोक से आपको समझा रहा हूं, मतलब हम लोग समझने की प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा समझा क्यों नहीं कि भौतिक जगत में ये नहीं होने वाला है, अथवा आपको सहना ही पड़ेगा। आचार्य लोग इसको लिखते हैं प्राक शरीर विमुक्षणात्, वो लिखते हैं जब तक इसी भौतिक शरीर से आप मुक्त को प्राप्त नहीं करते, मुक्ति को प्राप्त नहीं करते, तब तक ये सहना पड़ेगा। तो कितना बड़ा यात्रा करना है हम लोगों को, आप इसको अनुमान लगा सकते हैं, बहुत लंबा यात्रा है। मुक्ति प्राप्त हम कर सकते हैं? अभी अगर मैं कुछ आपको चुटकुली कहूं आप हंसोगे ना, लेकिन अगर भक्ति के भाव के साम्राज्य में प्रवेश करके रो तो फिर आप ज्यादा देर तक यात्रा कर सकते हो। कहां तक? गंभीरता पूर्वक देख सकते हो मुझे, प्रभु जी आप आज के क्लास में बहुत रोए, भाव के साम्राज्य में प्रवेश करके हमको खिन्न भिन्न कर दी। आप वहां तक जा सकते हो, गंभीरता पूर्वक देख सकते हो मुझे, लेकिन मेरे साथ रो नहीं सकते। रो सकते हो? रो सकते हो क्या? हो सकता है, हो सकता है, कोई ऐसे भक्त होंगे तो फिर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ चुटकुली कहूं, मैं हंसो या ना हंसो, लेकिन आप लोग तो जरूर हंसोगे। क्यों ऐसा होता है? वायरस वाइस वर्षा क्यों प्रवेश करता है? वायरस सीधे रास्ते में प्रवेश करना चाहे, उल्टे रास्ते में वो प्रवेश कर रहा है कॉन्शियसनेस में। इसलिए होता है कि सत्वगुण का एक लक्षण है सुख देना, लेकिन सुख को प्राप्त करते ही हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग समझते कि कृष्ण चेतना से ये सुख आया, क्योंकि कृष्ण कथा हो रहा था और प्रभु जी उनके बीचों बीच कुछ ऐसा चीज डाल दी जिसके कारण हंसी का आया, तो मन का थोड़ा रिपेयर हुआ। मन ऐसे गाड़ी चलाते चलाते उसको ग्रीसिंग नहीं करते हैं तो फिर कलंक लग जाता है अथवा रस्ट हो जाता है, तो रोड पे चलाते चलाते कें 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 होता रहता है, अरे ठीक से तेल नहीं दिया उसमें इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो बीच में हंसाना एक ये जैसा होता है जैसे गाड़ी में तेल देना, लेकिन वास्तव में वो तेल देना जैसा नहीं है, वो वास्तव में वो और भी रस्ट हो रहा है। क्यों? क्यों हम आपके सत्वगुण को और बढ़ा रहे हैं? आप शुद्ध सत्वगुण में रहेंगे तो फिर बहुत हंसेंगे, सुख को प्राप्त करेंगे, ये सारा सत्वगुण का लक्षण है। लेकिन उसको फाइंड आउट करना जिस समय घट रहा है इंद्रियों के माध्यम से, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और सत्वगुण सुख में, और उसका कार्य भी बहुत सुख में है इंद्रियों के माध्यम से, उसको फाइंड आउट करना भक्तों के लिए बहुत कष्ट है, हमारे लिए बहुत कष्ट है। इसके कारण जो सीरियस गंभीर भक्त हैं वो समझते हैं कि कहां पर क्या करना है, कैसे हैंडल करना है सिस्टम को, थोड़ा सा समझ करके वो लोग करते हैं। तो यही है कि हम लोग यहां पर जो कहा जा रहा है कि बलि को मुक्त करना है, ये बलि का सेवा उन्होंने किया है जैसे तैसे हो। बलि का पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं आप लोग, कैसा घटना घटा था, कैसे वो दानवीर बने, राजा बलि बने? 2 मिनट का स्टोरी है, मैं बहुत सहज से कह देता हूँ। बलि पूर्व जन्म में बहुत बड़े पापी थे, लेकिन उनके पुण्य के प्रभाव से उनको 2 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ था। तो ये यमराज उसको सिलेक्शन किए थे, तभी बृहस्पति को पता चला कि यमराज अब सिलेक्शन करके उसको 2 घड़ी का इंद्रासन दे रहे हैं। तो फिर बृहस्पति कहने लगे, इंद्र अभी तुम यहां से भाग करके निकल जाओ। क्यों? ऐसा होता है कभी कोई भक्त आ जाते हैं, महाराज आ जाते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट चले जाते हैं, तो प्रेसिडेंट आते हैं दूसरे मंदिर का और प्रेसिडेंट चले जाते हैं। तो बृहस्पति कहने लगे, गुरु इंद्र निकल जाओ यहाँ से 2 घड़ी के लिए, अब और एक इंद्र आ रहा है बैठने के लिए तुम्हारे आसन पे। तो इंद्र अपने काछा खुल करके चलो यहाँ से, नहीं तो फिर पीटेगा वो, निकल गए। लेकिन बलि महाराज का 2 घड़ी का समय इंद्रासन है, उनको ये बहुत ध्यान था। उन्होंने सिंहासन में बैठे बहुत कम समय के लिए, उठे फिर इंद्र का जिधर जहां पर सारा अस्त्र शस्त्र था उनको सब सारे ऋषि मुनियों को बुला करके सेवा करने लगे। उनका वज्र दे दिए विश्वामित्र को, बृहस्पति को कुछ अनुदान दे दिए, उनका ऐरावत हाथी किसको दे दिए, इंद्रासन और किसको दे दिए, पूरा इंद्रपुरी में जो जो भी कुछ था कल्प वृक्ष से लेकर के सब कुछ इधर उधर का दान दक्षिणा में भर दिए। दो घड़ी का समय सिर्फ दान में चैरिटी में ही बितर गया। समय खत्म हुआ, इंद्रासन खत्म हुआ, अभी उनको भयंकर पाप योनि में जाना है। लेकिन यमराज इसी कैलकुलेशन में देख रहे हैं कि स्वर्ग में ये चैरिटी करना बड़ी कठिन है स्वर्ग लोक में, और वहां पर अगर कोई चैरिटी कर लेता है थोड़ी देर के लिए, यहां पर कई हजार साल कंस्टेंटली चैरिटी करता रहता है, उनका भी फल होता है। तो फिर यमराज उसको कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करके कहे कि तुम्हारा सारा पाप खत्म होने के बाद तुम अभी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हो भूलोक में और इंद्रपुरी में भी। इसी के कारण उसी पूर्व लोक से इंद्र का वो शत्रु बन गए। जब इंद्र वापस आया, देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तभी कौन था मेरा सारा चीज ले लिया है। इसके कारण पूर्व जन्म से इंद्र का शत्रु थे बलि और बलि का शत्रु थे इंद्र। फिर वो प्रह्लाद के वंशज में जन्म लिए, फिर बलि बने, फिर इंद्रपुरी पर आक्रमण किए, इंद्र को कई बार परास्त किए, इंद्र के आसन पर विराजे, शुक्राचार्य का संग पाए। लेकिन बलि के हृदय के अंदर कपट नहीं था वास्तव में, क्योंकि वो प्रह्लाद के वंशज थे। लेकिन कपट कहां से संस्कार आया? शुक्राचार्य से। इसलिए भक्त लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किससे वो एसोसिएशन ले रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान कपिलदेव माता देवहूति को कह रहे हैं। सर्वसंग विवर्जित संग दोष हरा ही ते, जो संग दोष से मुक्त हैं, सारे कुसंग को विवर्जित कर दिए हैं, उनसे एसोसिएशन लेना है माता। अतस्तेस्तु संगस्ते पार्थ्य संग दोष हरा ही ते, अतः हे माता इसलिए उनसे ही संग लेना चाहिए। क्यों? वो सारे कुसंग से मुक्त है। शुक्राचार्य का एसोसिएशन कर रहे थे बलि, उनका संस्कार पड़ा उसमें। भगवान को सर्वस्व दान करते हुए भी बलि को तब तक उसी वरुण के फांस में बांधा गया जब तक उनका हृदय से और मन से पूर्ण मात्रा से उसकी संस्कार न मिट जाए, अथवा कपट का संस्कार न मिट जाए। तो इतना सेवा करने के बाद भगवान कपट को कपट से काटे। उन्होंने बलि से कैसे छीना राज्य, पूरा भूमंडल कपट से छीना ना। तो शास्त्र में होता है ना कि ना वो क्या होता है, वो एक नीति शास्त्र में है, हाँ क्या है, शायद हो सकता है, लेकिन और एक बहुत इम्पोर्टेंट है और मतलब बहुत प्रसिद्ध है, वो है कि जिसको जो जैसा आपके साथ व्यवहार करता है उसका अर्थ ऐसा है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। हाँ, जो जैसा आपके साथ व्यवहार करता है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है, उसका अर्थ ही है। बहुत सुंदर शब्द है उसमें, मेरा याद नहीं आ रहा है। हाँ, जैसा कुतेश है, लेकिन वो संस्कृत का है, हिंदी का है। यहाँ पर तो बलि भगवान के भक्त हुए और भगवान को संग मिला भगवान के एसोसिएशन के माध्यम से। और हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे हम शुद्ध भक्त बने, चाहे हम में अनंत कोटि जन्म से जैसा शुद्ध संस्कार ना पड़ा हो, लेकिन अथच प्रयास रहे हमारा कि भगवान का शुद्ध संग पड़े और उनके भक्तों का शुद्ध संग पड़े। हमारे मन के अंदर जो मैल है, इम्प्रेशन के रूप में भाव है, उसी इम्प्रेशन को हम हरि नाम के माध्यम से उसको नष्ट करें, दस नाम अपराध से मुक्त हो। कभी मेरा समय नहीं है तो थोड़ा नाम के ऊपर क्लैरिफिकेशन करता कि हरि नाम का जप कैसे करना चाहिए, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। लोग टाइम के हिसाब से सुधनाम को कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से सुधनाम नहीं होता। अगर 7 मिनट जप करे, 10 मिनट जप करे एक माला का, उसके हिसाब से शुद्ध नाम वास्तव में नहीं होता है। आप कितना धीर हो, कितना अधीर से अपने आप को मुक्त किए हो। धीर स्वभाव का अर्थ है गुण से अतीत होने के लिए जो प्रयत्न हो रहा है आपके माध्यम से, वो प्रयास जो कर रहे हो, जो 10 नाम अपराध से आपको मुक्त करवा रहा है, वो ठीक है। जब आप माला करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, तभी उतार चढ़ाव देख रहे होगे। कभी जोर से कह रहे होगे, कभी धीरे कह रहे होगे, कभी जोर से कह रहे होगे, कभी धीरे कह रहे होगे, कभी कहते कहते सो गए होगे, ये सारा उतार चढ़ाव दिखते होगे कभी अपने आप में। तो ये जैसे सागर में कभी बड़ा तरंग आता है, कभी छोटा तरंग, कभी प्लेन रहता है, ये हमारे शरीर में ऐसा तरंग, इच्छाओं का तरंग के कारण, गुणों के प्रवाह के कारण हमारे नाम हो रहा है। इसको बैलेंस करना है अथवा धीर स्तर से करना है, ताकि गुण का प्रभाव न है, उसमें मधुरता का प्रकट्य हो। हरि नाम बहुत इम्पोर्टेंट है अनर्थों को निवृत्ति करने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर किसका कोई प्रश्न हो अथवा कमेंट हो कर सकते हैं 2 मिनट में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, बताए गौर प्रमानंदे।